This podcast is an HT Smartcast original. Podcasts for every mood.
क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना शरीर कहाँ त्यागा था और इसका देवी सती के शक्तिपीठ से क्या संबंध है? इस एपिसोड में मैं आपको लेकर चल रही हूँ गुजरात के पावन प्रभास क्षेत्र में, जिसे देवी पाटन और प्रभास पाटन भी कहा जाता है। ये परम पावन तीर्थ है। यहीं पर भगवान शिव प्रथम बार ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और चंद्रमा को उन्होंने अपने भाल पर धारण किया और सोमनाथ कहलाए। इसी स्थान पर व्याग का बाण लगने से भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा और परम धाम को चले गए। यहीं पर स्थित है देवी सती का चंद्रभागा शक्तिपीठ, जहां देवी सती के उदर यानी पेट का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति है माँ चंद्रभागा यानी चंद्रमा की देवी, और भैरव यानी शिव को वक्रतुंड के रूप में पूजा जाता है।
नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और मैं आप सभी का HT Smartcast की ओरिजिनल पेशकश 51 शक्तिपीठ पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग आभूषण तथा वस्त्र के हिस्से धरती माँ ने धारण किए, वहाँ वहाँ शक्ति पीठ बने। इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको ले चलूंगी देवी के 51 शक्तिपीठ की यात्रा पर, जिसमें जानेंगे कि शक्तिपीठ कैसे बने, उनका महत्व क्या है, उसकी कहानी और वहां कैसे पहुंचे।
51 शक्तिपीठ विद निष्ठा के पिछले एपिसोड्स में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण का महादेव और देवी माँ से जीवन भर कितना गहरा संबंध रहा। वृंदावन के कात्यायनी शक्तिपीठ की माता कात्यायनी उनकी कुलदेवी थी। माता कात्यायनी की उपासना करके ही गोपियों ने श्री कृष्ण को मांगा। उनका मुंडन संस्कार माता भद्रकाली शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र में हुआ। महाभारत युद्ध से पहले उन्होंने वृंदावन और कुरुक्षेत्र के शक्तिपीठों पर उपासना की और युद्ध जीतने के उपरांत भी वो सीधे शक्तिपीठ पहुंचे। द्वारिका बसने के बाद भी उन्हें प्रभास क्षेत्र ही प्रिय था, क्योंकि यहाँ भोलेनाथ और माँ आदि शक्ति दोनों का वास था। वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ही उपासना किया करते थे। और ये जानकर तो मेरा हृदय भाव विह्वल हो गया कि शरीर त्यागने के लिए भी वो द्वारिका छोड़ प्रभास आ गए। और भोलेनाथ और माता के दर्शनों के बाद उन्होंने इसी स्थान पर अपना शरीर त्यागा। हमारे विभिन्न पौराणिक ग्रंथ भी इस बात की पुष्टि करते हैं। देवी पुराण में वर्णन आता है कि गुजरात के प्रभास क्षेत्र में त्रिवेणी संगम के निकट माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक चंद्रभागा शक्तिपीठ स्थित है। कपिला, हिरण्या एवं सरस्वती नदी के त्रिवेणी संगम पर शमशान भूमि के निकट सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के समीप है ये स्थान, जहाँ माता सती के उदर का निपात हुआ था। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण के देहोत्सर्ग का स्थान सरस्वती समुद्र संगम पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ था। उसमें लिखा है, समुद्रम पश्चिमम गत्वा सरस्वत्याब्धि संगमम। प्रभास द्वारिका के अंतर्गत एक प्राचीन तीर्थ है। काठियावाड़ गुजरात में सोमनाथ जी का मंदिर इसी के अंतर्गत था। ये विशिष्ट स्थल या देहोत्सर्ग तीर्थ नगर के पूर्व में हिरण्या, सरस्वती तथा कपिला के संगम पर बताया जाता है। इसे प्राची त्रिवेणी भी कहते हैं। यहीं पर भालका तीर्थ स्थित है, जहां पर भगवान ने अपने शरीर को त्यागा था। प्रभास पाटन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का भी पवित्र नदियों सरस्वती, हिरण्य और कपिला के संगम पर होने का वर्णन पुराणों में है, जहाँ भगवान शिव के काल भैरव के रूप में दिव्य शिवलिंग विराजमान है। इसे भगवान सोमनाथ यानी सोम या चंद्र के नाथ, भगवान शिव के निवास के रूप में भी जाना जाता है। इस विश्वास के कारण कि चंद्रदेव ने इस पवित्र भूमि पर शिवलिंग स्थापित करके भगवान शिव की पूजा की थी। चंद्रभागा शक्तिपीठ की महिमा अनंत है। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से देवी माँ का पूजन करते हैं, उन्हें अपने पिछले पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसी शक्तिपीठ स्थान पर चंद्रदेव ने श्राप मुक्ति के लिए तपस्या की थी। कहते हैं इस मंदिर का एक बार दर्शन कर लेने से मनुष्य का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय व्यतीत होता है। यही कारण है कि यहाँ नव विवाहिता युगल अम्बा माता का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करके ही अपने सुखमय जीवन की शुरुआत करते हैं। इस मंदिर का निर्माण विभिन्न युगों में विभिन्न चरणों में हुआ। कहते हैं कि सबसे पहले सूर्य देव द्वारा स्वर्ण, चंद्र देव द्वारा चांदी और फिर भगवान श्री कृष्ण द्वारा चंदन की लकड़ी से और फिर भीम देव द्वारा पत्थर के चार चरणों में ये मंदिर निर्मित हुआ। ये मंदिर अपने आप में प्राचीन कला और संस्कृति का अद्भुत चमत्कार है। इस स्थान के इतिहास के अनुसार चंद्रमा ने राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया। चंद्रमा 27 पत्नियों में से केवल एक पत्नी रोहिणी से ही अत्यधिक प्रेम करने लगे और शेष पत्नियों के लिए उतना प्रेम नहीं दिखाते थे। एक बार जब 26 पत्नियां अपने पिता के पास इस संबंध में शिकायत करने गईं, तो राजा दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब चंद्रमा ने राजा दक्ष का सम्मान नहीं किया तो राजा दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि वो अपनी चमक खो देंगे। अपने श्राप को दूर करने के लिए उन्होंने प्रभास के इस शक्तिपीठ स्थान पर भगवान शिव की पूजा शुरू की। तब उनकी इस पूजा से और उनका भक्ति भाव देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद के रूप में उनकी चमक लौटा दी और अपने ललाट पर धारण किया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 431 किलोमीटर या 7 घंटे 30 मिनट की दूरी पर स्थित है प्रभास क्षेत्र में चंद्रभागा शक्तिपीठ, जहां देवी सती के उदर यानी पेट का निपात हुआ था। ये शक्तिपीठ गुजरात राज्य के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस प्रसिद्ध हिंदू मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान मंदिर 12वीं शताब्दी से पहले बनाया गया था। ये शक्तिपीठ सोमनाथ ट्रस्ट के श्री राम मंदिर के पीछे की ओर तथा हरिहर वन के निकट स्थित है। भक्त सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके माता के शक्तिपीठ और राम मंदिर के दर्शन करते हैं। मंदिर जाने के लिए एक पतला रोड मार्ग है, उससे ही जाना होता है। ये गुजरात के प्रभास क्षेत्र में त्रिवेणी संगम के पास है और पुराणों में भी इसका उल्लेख है। मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता श्री राम मंदिर के प्रवेश द्वार के बाईं ओर से जाता है। मंदिर के नजदीक जाते ही एक बड़ा सा सफेद रंग का प्रवेश द्वार है। लाल रंग से उसके ऊपर महाकाली लिखा हुआ है। मंदिर के अंदर का परिसर बहुत विशाल है और परिसर में अनेकों पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो बहुत ही आकर्षक है और इस स्थान का वातावरण बहुत ही शुद्ध है। मंदिर के पीछे ही समुद्र है। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमें महाकाली यानी चंद्रभागा शक्तिपीठ के मुख्य मंडप के दर्शन होंगे। मंदिर का शिखर सोने से बनाया गया है और वहां भगवे रंग का एक झंडा लहरा रहा है। एक बड़ा सा घंटा दिखाई देता है जिसे बजाकर सभी श्रद्धालु आगे मंदिर की ओर बढ़ते हैं। गर्भगृह में प्रवेश करते ही हमें सामने ही माँ काली के दिव्य विग्रह के दर्शन होते हैं, जो कि बहुत ही आकर्षक और सुंदर है। माँ काली के दाईं ओर माँ चंद्रभागा देवी की प्रतिमा है। ये प्रतिमा बहुत ही अलग है। ये एक शिला पर उकरी हुई है जिसमें बस दो आंखें ही दिखाई पड़ती हैं और उनकी मूर्ति को भगवे रंग से रंगा हुआ है, वैसे ही जैसे अधिकतर हनुमान मंदिरों में हनुमान बाबा पर सिंदूर चढ़ा हुआ होता है। इस प्रतिमा का सुंदर श्रृंगार किया गया है और माला पहनाई गई है। गर्भगृह में जाते ही एक दिव्य शक्ति की अनुभूति होती है। आंखें बंद करके इस ऊर्जा को महसूस करिए और उस पल को सोचिए जब श्री कृष्ण यहाँ माता की उपासना करते होंगे। अब आपके मन की जो भी इच्छा हो वो आप माता से कह डालिए, वो अवश्य ही शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। जैसे ही हम माँ का दर्शन करके बाहर निकलेंगे तो उसी मंदिर के दाईं ओर मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक नंदी की मूर्ति स्थापित है। नंदी जी स्थापित हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि वो मंदिर किसका है। जी हाँ, वो मंदिर भगवान शिव का ही है। एक बड़ा सा शिवलिंग उस मंदिर में स्थापित किया गया है। मंदिर के निकट ही भगवान गणेश और हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित हैं। ये मंदिर पत्थरों से बना है और इसकी दीवारों पर देवताओं को समर्पित मूर्तियां नक्काशित हैं। सोमनाथ क्षेत्र में स्थित इस शक्तिपीठ के बारे में लोगों को जानकारी का अभाव है। अधिकांश गाइड इस मंदिर को प्रभास के स्थानीय धार्मिक स्थलों में शामिल नहीं करते हैं, इसलिए माता सती के इस रूप के दर्शन से भक्त वंचित रह जाते हैं। वो नहीं जानते कि श्री कृष्ण से पहले सोमनाथ और सोमनाथ से भी पहले सतयुग से देवी माँ का शक्ति पीठ यहाँ स्थापित है। इसलिए मैं निष्ठा HT Smartcast के साथ मिलकर इस पॉडकास्ट के माध्यम से शक्ति पीठों की महिमा और इतिहास को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर प्रभास क्षेत्र का मुख्य आकर्षण है। ये आस्था और उत्सव का केंद्र है। महाशिवरात्रि, कार्तिक पूर्णिमा और श्रावण मास जैसे त्योहारों के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। इसके बाद वो भालका तीर्थ और शक्ति पीठ के दर्शन भी करते हैं। इस शक्ति पीठ में नवरात्रि और शिवरात्रि के त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ गरबा और डांडिया खेला जाता है, माता का नित्य श्रृंगार होता है और इस स्थान को बहुत सुंदर सजाया जाता है। ये मंदिर सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर के पास ही एक संग्रहालय है जहां आप भगवान शिव और माता के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद त्रिवेणी संगम के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सूर्य मंदिर, गीता मंदिर, बलराम जी की गुफा, अहिल्याबाई मंदिर जैसे कई आकर्षक स्थलों के दर्शन कर सकते हैं। शाम के समय आप सोमनाथ मंदिर प्रांगण में लाइट एंड साउंड शो को बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। आइए अब जानते हैं कि यहाँ कैसे पहुँचें। निकटतम हवाई अड्डा केशोद हवाई अड्डा है, जो जूनागढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। जूनागढ़ यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन है। जूनागढ़ सड़क मार्ग द्वारा भी ये स्थान अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और आप बस या निजी वाहन के द्वारा यहाँ पहुँच सकते हैं। मोदी सरकार के प्रयासों से इस स्थान का सौंदर्य और सुविधाएं देखते ही बनती हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम चलेंगे बिहार के सासाराम में, जहां स्थित है तारा चंडी शक्तिपीठ, जहां माना जाता है कि देवी माँ की आंख गिरी थी।
आगे की कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मैं हूं निष्ठा सारस्वत और आप सुन रहे हैं 51 शक्तिपीठ। अगर आप कोई जानकारी या फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, निष्ठा सारस्वत ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। साथ ही आप HT Smartcast को भी फॉलो कर सकते हैं उनके सभी सोशल हैंडल्स पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग इन करें htsmartcast.com पर।
इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @htsmartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।